चार, राजपूतों का विद्रोह और संघर्ष। राजपूतों से औरंगजेब के संघर्ष का कारण राजनीतिक और धार्मिक दोनों था। औरंगजेब राजपूतों के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करना चाहता था। वह उनके राज्यों को मुगल राज्य की सीमाओं में सम्मिलित करना चाहता था। वह उनमें से प्रत्येक को संदेह की दृष्टि से देखता था। वह उनमें से प्रत्येक को संदेह की दृष्टि से देखता था और वह जिंदा पीर और इस्लाम का कट्टर समर्थक था। उन्हें अपनी धार्मिक नीति के व्यवहारिक प्रयोग में सबसे बड़ी बाधा मानता था। राजपूतों की शक्ति को नष्ट किए बिना औरंगजेब की धार्मिक नीति भारत में सफल नहीं हो सकती थी। इसलिए और यदि सफल भी हो जाती तो अस्थायी नहीं हो सकती थी। परंतु औरंगजेब कूटनीतिज्ञ था, इसलिए उसने चालाकी और अवसर देखकर कार्य करना पसंद किया। उसकी तरकीब कुछ भी हो, परंतु उसका लक्ष्य अस्पष्ट था। राजपूतों से भी औरंगजेब का यह लक्ष्य छिप न सका कि औरंगजेब उनके सम्मान, शक्ति और राज्य को समाप्त करने पर तुला हुआ था। जैसे ही राजपूतों को यह अस्पष्ट हुआ, उन्होंने अपनी रक्षा के लिए हथियार उठा लिए, जिसका परिणाम था राजपूतों का मुगलों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष और विद्रोह। उस समय राणा राज सिंह मेवाड़ का, राजा जसवंत सिंह मारवाड़ का और राजा जय सिंह अंबर का शासक था। राजा जय सिंह और राजा जसवंत सिंह दोनों मुगलों की सेवा में थे और उनका स्थान राज्य के योग्यतम सेनापतियों में था। उत्तराधिकार के युद्ध के आरंभ होने के अवसर पर राजा जय सिंह को सुलेमान शिकोह के साथ शाह सुजा के विरुद्ध भेजा गया था और शाह सुजा को प्राप्त करके उसे बंगाल तक खदेड़ दिया गया था। परंतु शामुगढ़ के युद्ध में दारा शिकोह की पराजय के पश्चात वह औरंगजेब के साथ हो गया था। जसवंत सिंह ने औरंगजेब का मुकाबला धर्मठ के युद्ध में किया और औरंगजेब तथा शाह सुजा के युद्ध के समय भी वह औरंगजेब का साथ छोड़कर चला गया था। परंतु उसके पश्चात राजा जय सिंह के समझाने पर तथा दारा शिकोह की स्थिति को नष्ट प्राय समझकर वह भी औरंगजेब के साथ हो गया था। इस प्रकार ये दोनों राजपूत शासक औरंगजेब की सेवा में चले गए थे। परंतु औरंगजेब उन दोनों पर संदेह करता था। उसने दक्षिण के कठिन अभियान में राजा जय सिंह को नियुक्त किया। बीजापुर के विरुद्ध अभियान में असफल होने पर जुलाई 1666 ईस्वी में बुरहानपुर के राजा जय सिंह की मृत्यु हो गई। राजा जसवंत सिंह को औरंगजेब ने अफगानिस्तान की सीमा पर भेजा, जहां अफगानों के विरुद्ध निरंतर युद्ध करते हुए उसने अपने शौर्य और अपनी योग्यता को प्रकट किया। पहला, मारवाड़ पर आक्रमण। यह कहा जाता है कि जब राजा जसवंत सिंह जीवित रहा, औरंगजेब ने संतोष की सांस नहीं ली। 20 दिसंबर 1678 ईस्वी में अफगानिस्तान के जमरूद नामक स्थान पर राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। जसवंत सिंह के बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी पृथ्वी सिंह को औरंगजेब ने चालाकी से जहरीली पोशाक पहनाकर पहले ही मरवा दिया था और उसके दो पुत्र अफगानों से युद्ध करते हुए मारे गए थे। ऐसी स्थिति में राजा का कोई भी उत्तराधिकारी जीवित न था। जसवंत सिंह की मृत्यु के 3 सप्ताह पश्चात औरंगजेब ने मारवाड़ को मुगल राज्य में सम्मिलित करने के लिए सेना भेज दी। मारवाड़ को मुगल राज्य में सम्मिलित करने के लिए सेना भेज दी। मारवाड़ की राठौर सेना अपने राज्य के साथ अफगानिस्तान में थी। इस कारण मारवाड़ में मुगलों का कोई विशेष विरोध नहीं हुआ और मुगलों ने मारवाड़ पर अधिकार कर लिया। स्वयं औरंगजेब इस कार्य के लिए अजमेर गया। मारवाड़ के मंदिरों को गिरा दिया गया और वापस दिल्ली आने पर औरंगजेब ने 12 अप्रैल 1679 ईस्वी को हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। मारवाड़ को और अधिक अपमानित करने के उद्देश्य से नागर के सरदार को 56 लाख रुपए में जसवंत सिंह का राज सिंहासन बेच दिया गया और उसने मुगल सेना की सुरक्षा में जाकर सिंहासन को अपने अधिकार में ले लिया। ऐसा प्रतीत होता था कि मारवाड़ का स्वतंत्र अस्तित्व सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा, परंतु मारवाड़ का भाग्य सूर्य अस्त नहीं हुआ। अफगानिस्तान से वापस आते हुए लाहौर में राजा जसवंत सिंह की दो रानियों ने दो पुत्र को जन्म दिया। उन बच्चों में से एक की मृत्यु कुछ सप्ताह पश्चात हो गई, परंतु दूसरा बच्चा अजीत सिंह जीवित रहा। जसवंत सिंह का सेनापति दुर्गादास अपनी राजा की रानियों और अजीत सिंह को लेकर दिल्ली पहुंचा और औरंगजेब से मांग की कि मारवाड़ का राज्य अजीत सिंह को दे दिया जाए। औरंगजेब ने दुर्गादास से अजीत सिंह को उसे सौंप देने की मांग की और मारवाड़ को वापस देने की यह शर्त रखी कि अजीत सिंह इस्लाम धर्म को स्वीकार कर ले। उस समय से राठौरों और मुगलों का संघर्ष आरंभ हुआ, जो बीच बीच में कुछ समय तक स्थगित रहने के बाद भी औरंगजेब की मृत्यु तक चलता रहा। दुर्गादास ने रानियों को मर्दाने वस्त्र पहनवाए, दासियों को रानिये के वस्त्र पहनवाए। अजीत सिंह के स्थान पर एक दासी पुत्र को छोड़ा और रानियों तथा अजीत सिंह को लेकर चुपके से दिल्ली से मारवाड़ की ओर भाग लिया। औरंगजेब को उसकी सूचना तब मिली जब दुर्गादास 9 मील का सफर तय कर चुका था। औरंगजेब ने उसका पीछा करने के लिए मुगल सेना भेजी, परंतु मार्ग में राठौरों की छोटी छोटी टुकड़ियां मुगलों के मार्ग में बाधा डालती रही, जिससे दुर्गादास को समय मिलता गया और अंत में वह मारवाड़ पहुंच गया। मारवाड़ के राजपूत अपनी रानी और अल्पायु शासक की सुरक्षा के लिए शस्त्र लेकर खड़े हो गए। मारवाड़ का स्वतंत्रता संग्राम आरंभ हो गया। औरंगजेब ने एक ग्वाले के पुत्र को अजीत सिंह घोषित किया, उसने इस्लाम में परिवर्तित करके उसका नाम मुहम्मद राज रखा और असली अजीत सिंह को नकली बताया, परंतु राठौरों पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने दुर्गादास के नेतृत्व में मुगलों से युद्ध जारी रखा। दुर्गादास राठौरों के युद्ध का जीवन और आत्मा सिद्ध हुआ। राजपूत उसकी बहादुरी को अभी तक स्मरण करते हैं और कहते हैं, हे माँ, पुत्र ऐसा जन देना जैसा दुर्गादास। कोष्टक में ए माँ, ऐसे पुत्र को जन्म दे जैसा कि दुर्गादास था, कोष्टक बंद। टाड ने उसको राठौरों का यूलिसेस कहा, जो यूलिसेस यूनान का महान योद्धा था, और डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने उसके बारे में लिखा है, भीषण विपत्तियों के संघर्ष करते हुए चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हुए और अपने देश के निवासियों के द्वारा आत्मविश्वास खो देने और उसके अनिश्चित होने के उपरांत भी उसने अपनी स्वामी को पक्ष को जीवित रखा। मुगलों का स्वर्ण उसे ललायत न कर सका और मुगल अस्त्र उसके साहस को न तोड़ सके। राठौरों में प्रायः वह अकेला ही था जिसने एक राजपूत सैनिक के साहस और सुरत्व तथा मुगल मंत्री की चतुरता, कूटनीतिज्ञता और संगठनकर्ता की मिलीजुली योग्यता का परिचय दिया। औरंगजेब स्वयं अजमेर पहुंचा। उसने अपने बड़े पुत्र अकबर और अजमेर के फौजदार तहव्वर खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना को मारवाड़ पर दोबारा आक्रमण करने के लिए भेजा। औरंगजेब के आदेश से मारवाड़ का एक एक मंदिर तोड़ दिया गया, उनके स्थानों पर मस्जिदें खड़ी कर दी गईं, घर घर में लड़ाई की गई और सभी तरफ बर्बादी फैला दी गई, परंतु अजीत सिंह और दुर्गादास अधिकार में न आ सके। राठौरों ने अपने नगरों और गांवों को छोड़कर जंगलों और पहाड़ों में छुपकर युद्ध जारी रखा। दूसरा, मेवाड़ का युद्ध में सम्मिलित होना। मेवाड़ का राजा राज सिंह ने उस अवसर पर मारवाड़ की तरफ से मुगलों के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित होने का निश्चय किया। औरंगजेब ने राणा से जजिया मांगा था। उसकी नीति में मेवाड़ की शक्ति को समाप्त करना आवश्यक था। अजीत सिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थी। सबसे प्रमुख बात यह थी कि मारवाड़ के समाप्त हो जाने के पश्चात मेवाड़ की सुरक्षा कठिन था। राणा जय सिंह ने चित्तौड़ के किले को समाप्त मरम्मत करना आरंभ करा दिया और देववाड़ी के दर्रे की सुरक्षा के लिए सेना भेज दी। औरंगजेब भी चुपचाप नहीं बैठा हुआ था, उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया। नवंबर 1679 ईस्वी में उसने अजमेर छोड़ दिया और मेवाड़ की नवीन राजधानी उदयपुर की ओर बढ़ा। देवबाड़ी के दर्रे पर मुगलों का अधिकार हो गया और राणा राजधानी को छोड़कर पहाड़ों में चला गया। मुगलों ने उदयपुर पर सरलता से अधिकार कर लिया। उदयपुर के सभी हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए। यह विश्वास किया जाता है कि 173 मंदिर उदयपुर में और 63 मंदिर चित्तौड़ में तोड़े गए थे। 1680 ईस्वी में एक युद्ध में राज सिंह की पराजय हुई। बाकी कार्य की पूर्ति के लिए अपने पुत्र अकबर को चित्तौड़ में छोड़कर औरंगजेब 1680 ईस्वी में अजमेर वापस चला गया। परंतु राज सिंह अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। मई तक ही राजपूतों ने मुगलों का कठिन स्थिति में डाल दिया। औरंगजेब ने अकबर को हटाकर शाहजादा मुअज्जम को शाहजादा आजम की कार्य करने के आदेश दिए। इस बार मेवाड़ पर तीन तरफ से आक्रमण किया गया, जिसमें राजा जय सिंह को घेर कर पकड़ लिया जाए अथवा मार दिया जाए। परंतु यह आक्रमण सफल न हो सका। राठौर और सिसोदिया मिलकर कार्य कर रहे थे, जबकि मुगल शहजादे योजना के अनुसार युद्ध को न चला सके। इसी अवसर पर मुगलों ने तीसरी बार मारवाड़ पर आक्रमण किया और युद्ध मेवाड़ तथा मारवाड़ दोनों स्थानों पर साथ साथ चलता रहा। दूसरा, शहजादा अकबर का विद्रोह। अकबर राजपूतों के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध से निराश हो गया था। उसे अपने पिता की धर्मांधता की नीति की सफलता में विश्वास न था। विचारों से भी वह उदार था। उसी अवसर पर राणा राज सिंह और दुर्गादास ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि आप अपने को भारत का बादशाह घोषित कर दे तो मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही सेनाएं उसकी सहायता करेंगी। अकबर ने अपने पिता औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह का निश्चय कर लिया। परंतु 1 नवंबर 1680 ईस्वी को राणा जय सिंह की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र जय सिंह को मेवाड़ का राजा अड़ा बना दिया गया। उसके राज्याभिषेक के कारण अकबर की घोषणा में कुछ विलंब हुआ, परंतु जैसे ही वह कार्य पूरा हुआ, अकबर ने 11 जनवरी 1618 ईस्वी को स्वयं को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। घोषणा की गई कि बादशाह औरंगजेब ने इस्लाम के कानूनों के विरुद्ध कार्य करके राज्य सिंहासन पर अपना अधिकार खो दिया है। चार मुल्लाओं ने औरंगजेब के विरुद्ध और अकबर के पक्ष में फतवा पढ़ा। राजपूत सेनाओं को साथ लेकर अकबर अजमेर की तरफ बढ़ा। औरंगजेब के पास उस समय बहुत थोड़ी सेना थी, तो उसने तुरंत शहजादा मुअज्जम को अपनी सेना के साथ आने का आदेश दिया और स्वयं भी अजमेर से 8 मील दूर रोहरा नामक स्थान पर अकबर के मुकाबले के लिए पहुंच गया। औरंगजेब ने अकबर के साथ के मुगल सरदारों को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया और कुछ अंशों में सफलता पाई। अकबर के मुख्य सलाहकार तोहव्वर खां को उसने अपनी सूचना भेजी, यदि वह उसके सामने शीघ्र प्रस्थित नहीं हुआ तो उसके परिवार के सभी सदस्यों का कत्ल कर दिया जाएगा, जो उस समय शाही डेरे में ही थे। तोहव्वर खां एक रात चुपके से अकबर का साथ छोड़ गया और जब औरंगजेब के पास पहुंचा तो उसे शाही डेरे की सामने ही कत्ल कर दिया गया। औरंगजेब ने एक पत्र भी तैयार कराया जो औरंगजेब की तरफ से अकबर को लिखा गया था, जिसमें अकबर की सराहना की गई थी। उसने बहुत चतुराई से राजपूतों को फंसाकर औरंगजेब तक पहुंचा दिया था। यह पत्र राजपूतों के खेमे के निकट डाल दिया गया। राजपूतों ने इस पत्र को देख लिया और उनमें से अधिकांश को अकबर पर संदेह हो गया। वे राजपूत उसी रात अकबर का साथ छोड़कर चले गए और जब अकबर सुबह सोकर उठा तब दुर्गादास और कुछ वफादार राजपूत सरदारों तथा 2 या 3 हजार सैनिक के अतिरिक्त उसका साथ देने वाला कोई न था। औरंगजेब की चालाकी पूर्णतया सफल हुई और अकबर का संपूर्ण साहस और उत्साह समाप्त हो गया। तथा वह मेवाड़ की तरह भाग खड़ा हुआ। राजपूत अपनी भूल को बहुत देर से समझ सके। दुर्गादास ने अकबर को अपनी संरक्षण में रखा। राजपूताना तथा खान देश की कठोर यात्रा की, मुगल सेना से उसकी रक्षा की और उसे शिवाजी के पुत्र संभाजी के दरबार में पहुंचाने में सफलता पाई। संभाजी ने अकबर को संरक्षण दिया, परंतु उसे उनके पिता के विरुद्ध युद्ध करने के लिए पर्याप्त सहायता न दे सका। 1682 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं अकबर का पीछा करता हुआ दक्षिण भारत गया। अपने जीवन को अरक्षित समझकर अकबर भारत छोड़कर फारस के लिए चल दिया। मार्ग में समुद्री तूफान आने के कारण उसे मशक्कत के इमाम के यहाँ शरण लेनी पड़ी जो उसे औरंगजेब को 200,000 रुपये के बदले में सौंपने का तैयार हो गया। परंतु फारस के शाह के दबाव के कारण उसे अकबर को छोड़ना पड़ा और अकबर फारस पहुंच गया। वहीं पर औरंगजेब के अंतिम दिनों में अकबर की मृत्यु हुई। 5वां, मेवाड़ और मुगलों की संधि। अकबर का विद्रोह तो सफल न हुआ, परंतु उसने मेवाड़ को बचा दिया। औरंगजेब को मेवाड़ से अपनी सेनाएं हटानी पड़ी। उनके लिए अकबर को समाप्त करना अधिक आवश्यक था। दूसरी तरफ राणा राज सिंह की मृत्यु हो गई थी। राणा जय सिंह युद्ध को समाप्त करने के लिए उत्सुक था। इस कारण 24 जून 1681 ईस्वी को मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि हो गई, जिनके अनुसार राणा ने जजिया के बदले में मंडलपुर और बेदनूर के परगनों मुगलों को दे दिए। दूसरा, मुगलों ने मेवाड़ से अपनी सेनाएं हटा लेने का वायदा किया। और तीसरा, राणा जय सिंह के को पंचहजारी मनसबदार का पद दिया गया। युवराज भीम सिंह को राजा का पद दिया गया और उसे मुगलों की सेवा में ले लिया गया। 5, मारवाड़ के युद्ध का जारी रहना। यद्यपि मेवाड़ ने मुगलों की संधि करके मारवाड़ के साथ छोड़ दिया, परंतु मारवाड़ ने साहस नहीं छोड़ा और युद्ध को जारी रखा। मारवाड़ की स्वतंत्रता का युद्ध शुभता की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। अ 1681 ईस्वी से 1687 ईस्वी तक का समय, जिस समय में दुर्गादास दक्षिण में था, राठौरों के बिना किसी नेतृत्व के युद्ध को जारी रखा। ब 1687 से 1701 ईस्वी तक का समय, जिस समय में दुर्गादास दक्षिण से वापस आ चुका था और अजीत सिंह जवान हो चुका था तथा दोनों ने मिलकर राठौरों का नेतृत्व किया, परंतु मुगलों को मारवाड़ से बाहर निकालने में असफल रहे। 1701 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का समय, जिस समय में राठौरों ने मारवाड़ को स्वतंत्र कराने में सफलता पाई। 1681 से 1687 ईस्वी तक के समय में राठौरों ने गुरिल्ला युद्ध नीति का सहारा लिया। वे छिप छिप कर मुगलों पर आक्रमण करते रहे और मुगलों की रफद एवं सेना की हानि पहुंचाते रहे। 1687 ईस्वी से 1701 ईस्वी तक के समय में दुर्गादास और अजीत सिंह ने राठौरों का नेतृत्व किया और उन्हें बूंदी के दुर्जनशाला हाड़ा की भी सहायता प्राप्त हुई। उन्होंने अनेक मुगल चौकियों पर अधिकार कर लिया। मुगलों की सीमाओं में घुसकर दिल्ली के निकट तक आक्रमण किए। अजमेर के फौजदार को भी राठौरों ने परास्त किया, परंतु गुजरात के सूबेदार सुजात खान ने उन्हें एक चालाक और कूटनीतिज्ञ शत्रु मिला। 1694 ईस्वी में दुर्गादास ने अकबर की पुत्री सफियातुन्निसा को और 1698 ईस्वी में उसके पुत्र बुलंद अख्तर को मुगलों को वापस कर दिया। दुर्गादास ने इन बच्चों की सुरक्षा ही नहीं की थी, बल्कि उनकी शिक्षा, यहाँ तक कि इस्लाम का धार्मिक शिक्षा का पूर्ण प्रबंध किया था। धर्मांध औरंगजेब के लिए यह सब एक अच्छा सबक था। इसके बदले में अजीत सिंह को झालौर, संचोद और सिवाना के परगने तथा शाही सेवा प्रदान की गई और दुर्गादास को 3000 का मनसबदार और गुजरात में पाटन की फौजदारी दी गई। यह राठौरों के लिए एक सम्मानपूर्ण समझौता नहीं माना जा सकता था, परंतु दुर्गादास और अजीत सिंह ने उस समय का सदुपयोग अपनी शक्ति को संगठित करने के लिए किया। 1701 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक के समय में अजीत सिंह और दुर्गादास ने पुनः विद्रोह कर दिया। परंतु मारवाड़ की दुर्बल स्थिति और अपनी कठिन परिस्थितियों के कारण 1704 ईस्वी से 1705 ईस्वी में उन्हें मुगल सत्ता को स्वीकार करना पड़ा। राठौरों का अगला कदम उस समय उठा जबकि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण भारत में अव्यवस्था फैल गई और औरंगजेब के पुत्रों में सिंहासन के लिए युद्ध आरंभ हो गया। 1707 ईस्वी में अजीत सिंह ने जोधपुर मारवाड़ की राजधानी पर अपना अधिकार कर लिया और अपने को सम्राट घोषित कर दिया। प्रायः संपूर्ण मारवाड़ राठौरों के अधिकार में आ गया और दुर्गादास द्वारा आरंभ किया हुआ कार्य सरलता से संपन्न हुआ। 5. अन्य विद्रोह। औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण मालवा, बिहार और बुंदेलखंड में भी विद्रोह हुए, मुख्यतया उस अवसर पर जबकि औरंगजेब दक्षिण भारत में चला गया। इनमें से बुलंदखंड का विद्रोह सफल हुआ। ओरछा के राजा चंपत राय ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया और झंडा खड़ा किया। 1661 ईस्वी में उसने मुगल आधिपत्य स्वीकार करने की बजाय आत्महत्या कर ली। जब उसका पुत्र छत्रसाल मुगलों की तरफ से दक्षिण की युद्धों में भाग लेने के लिए गया तो वह शिवाजी से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि अपनी सेवाएं शिवाजी को अर्पित की, परंतु शिवाजी ने उसे बुंदेलखंड में विद्रोह करने की सलाह दी। छत्रसाल ने बुंदेलखंड में जाकर विद्रोह आरंभ कर दिया और उसे सफलता मिली। उसने धमौनी और कालिंजर पर अधिकार कर लिया। 1705 ईस्वी में औरंगजेब ने उसे संधि करना उचित और कालिंजर पर अधिकार कर लिया। 1705 ईस्वी में औरंगजेब ने उसे संधि करना उचित समझा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात वह बुंदेलखंड का स्वतंत्र शासक बन गया। इस प्रकार भारत के अन्य भागों में भी औरंगजेब के समय में अनेक उपद्रव और विद्रोह चलते रहे जिन्होंने राज्य की शक्ति को दुर्बल करने में बहुत बड़ा भाग दिया। दूसरा, सिख संप्रदाय का उत्थान और मुगलों से संबंध। सिख संप्रदाय का निर्माण मुगल शासन काल में ही हुआ। सिखों के प्रथम गुरु नानक भक्ति मार्ग के प्रचारकों में से एक थे। भक्ति आंदोलन ने जो युग मध्य के धार्मिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता रहा, पंजाब को भी प्रभावित किया। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की समानता में विश्वास करने वाले तथा हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के निकट लाने का प्रयत्न करने वाले संतों में से एक महान संत गुरु नानक हुए। पंजाब उनके कार्य क्षेत्र का प्रमुख स्थान रहा। यद्यपि उन्होंने संपूर्ण भारत और भारत से बाहर के देशों का भी भ्रमण किया, गुरु नानक ने किसी नवीन धार्मिक संप्रदाय की स्थापना नहीं की। उन्होंने न किसी धार्मिक पुस्तक की रचना की और न किसी स्थान को धार्मिक स्थल बनाने का प्रयत्न किया। उन्होंने तो केवल शिष्य बनाए थे जो कालांतर में सिख कहलाए। अपनी मृत्यु के अवसर पर नानक ने अपने विचारों के प्रचार के लिए अंगद, पहला नाम लहना जो चुना, जो सिखों के दूसरे गुरु हुए। गुरु नानक 1469 से 1539 ईस्वी बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक के विचारों के अध्ययन हेतु तुर्क अफगान काल के अंतर्गत अध्याय 19 में वर्णित भक्ति आंदोलन को देखिए। गुरु अंगद 1539 ईस्वी से 1552 ईस्वी। गुरु नानक ने अपनी मृत्यु के अवसर पर अपने शिष्य लहना को गुरु की गद्दी के लिए चुना। लहना जाति से खत्री था और दुर्गा देवी का पुजारी था। गुरु नानक ने लहना का नाम अंगद अर्थात अपने शरीर का एक भाग रखा और बताया कि उनकी आत्मा अंगद में प्रवेश कर गई है। गुरु अंगद ने गुरु नानक द्वारा आरंभ की गई लंगर व्यवस्था को अस्थायी बनाया दिया। इससे सिखों में जाति भेदभाव नष्ट हुए, भाईचारे की भावना बढ़ी और सामाजिक समता का विकास हुआ। इससे सिखों और हिंदुओं का अंतर स्पष्ट हुआ क्योंकि हिंदुओं में अंतर जाति खान पान संभव नहीं था। यह विश्वास किया गया कि गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिप को आरंभ किया। इससे सिखों के एक पृथक साहित्य का निर्माण हुआ और सिख संस्कृत भाषा के अध्ययन से विमुख हो गए। जिस भाषा में हिंदुओं का अधिकांश धार्मिक साहित्य लिखा गया था, गुरु अंगद ने नानक के उपदेशों का संकलन भी आरंभ किया जो बाद में गुरु अर्जुन द्वारा संकलित ग्रंथ आदि ग्रंथ में सम्मिलित कर लिया गया। गुरु अंगद ने कोई नवीन धार्मिक विचार प्रस्तुत नहीं किया, उन्होंने गुरु नानक के उपदेशों के आधार पर ही धर्म प्रचार किया। 1552 ईस्वी में गुरु अंगद की मृत्यु हो गई। हुमायूं ने 1540 ईस्वी में गुरु अंगद से पंजाब में उस समय भेंट की थी जब वह शेरशाह से बिलग्राम कन्नौज के युद्ध में परास्त होकर भाग रहा था। गुरु अंगद ने राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया और सूरवंश के शासकों ने भी धर्म प्रचार के कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं किया।